वेल, राजवीर जिंदल के बंगले के सामने खड़े होकर अबीर सिंह राठौर ने अविनाश की ओर देखकर कहा, एक बार फिर सोच लो, हम उस इंसान से मदद लेने जा रहे हैं जिस इंसान से हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। अब आगे। तब अविनाश ने अपने हाथों की हथेलियां आपस में रगड़ते हुए बेचैनी से कहा, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं, लेकिन इस वक्त फिलहाल मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर कुछ है तो वो है मेरी बहन के चेहरे की मुस्कुराहट, जो सिर्फ और सिर्फ उसके पति के ठीक होने के बाद ही उसके चेहरे पर आएगी। तब अबीर सिंह राठौर ने मन में अपनी फीलिंग्स को महसूस करते हुए कहा, उसके चेहरे की मुस्कुराहट के लिए तो मैं भी कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल उसने ये बात अपने मन में ही रखी थी। ये बात सच थी कि अबीर सिंह राठौर आस्था को बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन फिलहाल आस्था को अरमान सिंघानिया के साथ खुश देखकर उसने पीछे हटने का फैसला ले लिया था। इस बात के बारे में वो सीधे सीधे अरमान से बात भी करना चाहता था और साथ ही साथ उसे ये बात बताना चाहता था कि अब वो उसके और आस्था के बीच में नहीं आएगा, ताकि वो उसके साइड से बिल्कुल बेफिक्र रहे। लेकिन उससे पहले ही ये सारा हादसा हो चुका था। फिलहाल ज्यादा देर ना करते हुए अविनाश ने अबीर से कहा, मैं अंदर जा रहा हूँ। वैसे भी मैंने कितनी ही बार राजवीर जिंदल को फोन करने की कोशिश की है, लेकिन उसके आदमी ने एक बार भी उससे बात नहीं करवाई। ये तो अच्छा हुआ कि मैं इसका घर देख चुका था। जानबूझकर अविनाश ने ये बात अबीर से छुपा ली थी कि आस्था भी राजवीर जिंदल का घर देख चुकी है। कहीं ना कहीं अबीर को तो यही लग रहा था कि अविनाश सारा बदला लेना चाहता होगा। आस्था को शायद उस वक्त इसके बारे में ज्यादा कुछ खास जानकारी नहीं होगी, लेकिन उन दोनों को ही नहीं पता था कि उन दोनों से भी ज्यादा अगर कोई राजवीर जिंदल से नफरत करता था तो वो थी सिर्फ और सिर्फ हमारी चंचल और चुलबुली सी लड़की आस्था, जो फिलहाल दर्द में थी। वेल, जल्दी ही अविनाश ने थोड़ा आगे बढ़कर राजवीर जिंदल के घर की घंटी बजा दी थी। उस वक्त राजवीर जिंदल अपनी बीवी के बालों में कंघी कर रहा था और बड़े ही प्यार से उसकी मांग भरने के बाद उसके होठों पर लिपस्टिक लगा रहा था। आज भी इतने सालों के बाद राजवीर जिंदल की बीवी की लाश एकदम बिल्कुल तरोताजा रखी हुई थी। उसमें किसी भी तरह की कोई दुर्गंध या बदबू नहीं थी, क्योंकि राजवीर जिंदल एक तरह का मास्टरमाइंड था। उसने कितने सारे केमिकल्स पर रिसर्च की थी और उसने ही ये पता लगाया था कि लाश को कितने सालों तक बिल्कुल सेफ रखा जा सकता है। उसने एक ऐसा केमिकल खुद बनाया था और उसे अपनी बीवी पर अप्लाई किया था, जिसके बाद उसकी बीवी आज भी एकदम तरोताजा है। उसे देखकर कोई कहीं नहीं कह सकता था कि उसकी बीवी की लाश पूरे 20 साल पुरानी है। वेल, जैसे ही घर की घंटी बजी, राजवीर के माथे पर बल पड़ गए थे, क्योंकि उसने किसी को भी अपने घर का रास्ता नहीं बताया था और ना ही किसी को उसने अपने घर आने की इजाजत दी थी, क्योंकि वो अपनी बीवी के पास किसी को भी नहीं आने देना चाहता था। वेल, घंटी बजने पर उसने अपनी बीवी को साड़ी का पल्लू उठाया और फिर अच्छे से कमरे का दरवाजा लॉक करके अपने कपड़े ठीक करता हुआ अपने चेहरे पर चश्मा पहनकर बाहर जाने लगा था। वहीं दूसरी ओर वंशिका अपनी ठंडी आंखों से कभी ध्रुव को देख रही थी, कभी बीमार पड़े दादाजी को देख रही थी। रह रहकर वंशिका की आंखों के सामने वो सारे दृश्य याद आ रहे थे जब ये हंसता खेलता परिवार गांव में रह रहा था। कितनी हंसी मजाक कर रहा था, सबके चेहरों पर कितनी खूबसूरत सी मुस्कान थी, लेकिन अब तो सभी की आंखों में केवल नमी ही थी। वही रौनक थरथर कांप रही थी, क्योंकि अरमान सिंघानिया ने उसका सर पर हाथ रखा था, उसे अपनी बहन कहा था। अरमान बहुत कम लोगों के साथ रिश्ता जोड़ा करता था, लेकिन जिसके साथ रिश्ता जोड़ा करता था उसे दिल से निभाया करता था। उसी से रौनक के दिल में अरमान के लिए एक बड़े भाई वाली फीलिंग्स जन्म ले चुकी थी, और अरमान की ऐसी हालत देखने के बाद वो टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। उसका शरीर काफी कांप रहा था। आहान खुद उस वक्त टूटा हुआ था। आहान और रौनक दोनों मुंह लटकाए हॉस्पिटल की दीवार के सहारे नीचे बैठे हुए थे। वे लोग कुर्सी पर या बेंच पर भी नहीं बैठे थे, दोनों एक साथ जमीन पर बैठे हुए थे और दोनों की गर्दन झुकी हुई थी और दोनों की आंखों में आंसू थे। तब वंशिका ने उन दोनों को भी देखा और फिर वहां से मुंह मोड़कर अरमान सिंघानिया के वार्ड में जाने लगी थी। वंशिका ने डिसाइड कर लिया था एक बार अरमान सिंघानिया की जान चली जाए, क्योंकि 24 घंटे पूरे होने में ज्यादा समय नहीं बचा था, और अगर एक बार 24 घंटे पूरे हो जाते हैं तो उसने जो वायरस बनाया था वो बहुत जल्दी ही उसे खत्म कर सकता था। अब बस वंशिका ये बात श्योर करना चाहती थी कि इस बीच अरमान सिंघानिया को किसी भी तरह का कोई इलाज न मिले। उसने सोच लिया था कि बस एक बार अरमान सिंघानिया की जान चली जाए तो एक बार सभी जी भरकर रो लेंगे और फिर कुछ दिनों बाद अरमान सिंघानिया को भूल भी जाएंगे, क्योंकि अरमान सिंघानिया ने जो वंशिका के साथ किया था वो इतनी आसानी से नहीं भूलने वाली थी। वहीं दूसरी ओर आस्था अभी दादाजी के साथ उनके वार्ड में मौजूद थी और उनका हाथ पकड़कर बैठी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह से नम थी। आस्था बस खाली नजरों से कभी दादाजी की ओर देख रही थी, कभी साइड में खड़े ध्रुव और रश्मि को देख रही थी। आकाश, सुमित, टाइगर, मारिया, देव पांचों ही वहां मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे तो सबसे पहले उस शख्स को ढूंढना चाहते थे जिसने अरमान पर हमला किया था। उसे ढूंढकर उसकी कब्र खोदना चाहते थे।
इसलिए वे सब लोग पूरी तरह से एक बार फिर गांव में जाकर तहकीकात कर रहे थे। वेल, वहीं दूसरी ओर ध्रुव ने आस्था का हाथ पकड़ा और हौसला बढ़ाते हुए बोला, भाभी आप हमारी हिम्मत हैं। हम जानते हैं कि इस वक्त हमारे परिवार पर एक बहुत बड़ी दुख की घड़ी आ पड़ी है, लेकिन भाभी आपको हिम्मत रखनी होगी। आप चाहे तो क्या नहीं कर सकती हैं। अरे, आपने हमारे अरमान भाई जैसे इंसान को सुधार दिया। आपने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी, जिनकी जिंदगी में सिर्फ नफरत और गुस्से के अलावा कभी कुछ था ही नहीं। उनकी जिंदगी में आपने प्यार ही प्यार भर दिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है भाभी, आप भाई को मौत के मुंह से भी वापस ले आओगी। प्लीज भाभी, आप हिम्मत मत हारिए। प्लीज भाभी, आपको हौसला रखना होगा। भाभी प्लीज, आप ऐसे उदास मत होइए। आपकी ये उदासी हमसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। भाभी प्लीज, ऐसा बोलकर ध्रुव आस्था को हिम्मत देने लगा था। वहीं आस्था पर ध्रुव की बातों का असर होने लगा था और अचानक से उसने अपनी बेदर्दी से आंखों में आए आंसुओं को पोंछ कर कहा, मैं अरमान जी को कुछ नहीं होने दूंगी। आस्था ने हिम्मत से काम लिया था। तब आस्था ने बड़े ही प्यार से अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं अपने बच्चों के पिता को कुछ नहीं होने दूंगी और मैं उन्हें ठीक करके रहूंगी। कहीं ना कहीं रश्मि ने भी ध्रुव को आंखों ही आंखों में शाबाशी दी थी कि ध्रुव की बातों में आस्था पर असर दिखाया था। वेल, आस्था ने मजबूती से दादाजी का हाथ पकड़कर कहा, दादाजी आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, अरमान जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये कहते हुए आस्था का गला भी रुंध रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक हिम्मत और कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। वहीं दूसरी ओर राजवीर जिंदल ने जल्दी ही दरवाजा खोल दिया था और अपने सामने अबीर और अविनाश को देखकर थोड़ा भड़कते हुए बोला, यस, कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? राजवीर जिंदल को अपने सामने देखने के बाद अविनाश और अबीर दोनों ने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था। उनका दिल कर रहा था कि अभी और इसी वक्त राजवीर जिंदल का अंत कर दें, लेकिन फिलहाल जैसे तैसे अविनाश ने खुद पर कंट्रोल किया था और अबीर के हाथों को भी कसकर पकड़ लिया था, क्योंकि अबीर की आंखों में वो खून उतरता हुआ देख चुका था, क्योंकि इस एक इंसान ने कितने सारे लोगों की जिंदगियों को बर्बाद किया था।
वहीं अविनाश की आंखों के सामने वो सीन उभर आया था जब राजवीर जिंदल ने उसकी माँ का लॉकेट पहने हुए गला ही काट दिया था। तो कहीं ना कहीं इस वक्त अविनाश की आंखें भी लाल सुर्ख हो गई थीं, लेकिन फिलहाल जल्दी ही उसके सामने आस्था का रोते हुए चेहरा आ गया था। फिर उसने अपने आप को इमोशनली थोड़ा नॉर्मल किया और राजवीर की ओर देखकर कहा, मिस्टर जिंदल, हम यहाँ आपके पास एक रिक्वेस्ट लेकर आए हैं। हमारे भाई को किसी ने एक खतरनाक वायरस इंजेक्ट किया है। केवल आप ही हैं जो इस वायरस का एंटीडोट बता सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्लीज़, उनका पूरा शरीर धीरे धीरे नीला पड़ रहा है। वो वायरस सांप के जहर से भी खतरनाक है, जो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर पर हावी हो रहा है। प्लीज़, हमें आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि आप हमारी मदद करें। लेकिन राजवीर जिंदल ने उन लोगों को घूरते हुए देखा और बेरुखी से बोला, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है हाँ? क्या तुम लोगों को ये नहीं पता कि मैं सिर्फ एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर हूँ, सिर्फ दिमाग के लोगों का डॉक्टर हूँ? मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ जो मैं किसी तरह का कोई एंटीडोट बनाता फिरूंगा। तुम लोग अब जाओ यहाँ से, मेरा इससे कोई मैटर नहीं है। वैसे भी मैं कब का रिटायरमेंट ले चुका हूँ। अब जैसे ही राजवीर जिंदल ने सीधे उन्हें घर के गेट के बाहर से ही खड़े खड़े सुनाया और बाहर जाने के लिए कहा। अब अबीर और अविनाश को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर अबीर ने कोशिश की और रिक्वेस्ट करते हुए बोला, लेकिन मिस्टर जिंदल, आप चाहें तो हम आपके मेहमान की कीमत दे सकते हैं, क्योंकि जिनकी जान को खतरा है वे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और शायद आपने भी उनका नाम सुना होगा। तब इससे पहले कि अबीर अरमान का नाम राजवीर को बताता, राजवीर ने अपने हाथ खड़े करके उन्हें टोकते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझे किसी की कोई मदद नहीं करनी है, तो तुम लोग अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। ऐसा बोलकर जल्दी ही राजवीर ने दरवाज़ा उनके मुँह पर बंद कर दिया था। अब तो दोनों ही काफ़ी हद तक मायूस हो गए थे। वहीं अबीर ने तो नाराज़गी से बोला कि वैसे भी ये हमारी मदद नहीं करने वाला है, क्यों ना इसका यही काम तमाम कर दें। तब अविनाश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत रहने के लिए कहा था और एक बार फिर से उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया था। और एक बार फिर राजवीर ने गुस्से से दरवाज़ा खोलते हुए झट से कहा, तुम लोग बड़े ही बेशर्म हो, अभी तक गए नहीं यहाँ से, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? तब इस बार अविनाश की आंखों में आंसू थे और अपने दोनों हाथों को जोड़कर विनती करते हुए बोला, देखिए प्लीज़ मिस्टर राजवीर जिंदल, प्लीज़ हमें आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी बहन का पति अरमान सिंघानिया इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। अब जैसे ही अविनाश ने ये कहा कि मेरी बहन का पति मिस्टर अरमान सिंघानिया जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, उसकी मदद कीजिए, तो अब राजवीर हैरान हो गया और अगले पल बोला, क्या नाम लिया तुमने, अरमान सिंघानिया? तब राजवीर के दिमाग में हल्का सा पुश हुआ और उसे जल्दी ही याद आ गया कि अरमान सिंघानिया कोई और नहीं बल्कि उसी का चेला है जिसे राजवीर बेहद पसंद करता है।
अब तो राजवीर जल्दी से बाहर निकलकर अपने दरवाजे को बंद करते हुए बोला, क्या हुआ है अरमान को? कहाँ है अरमान? अरमान को किसने वो वायरस दिया? किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे चेले को वायरस दिया? अब जैसे ही राजवीर ने इस तरह का लुक दिया और इस तरह की बातें की, अब तो अविनाश और अबीर दोनों ही हैरान हो गए थे।